एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने हमारी खुद की समझ को, कह सकते हैं, हिला के रख दिया। सिगमंड फ्रॉयड।
हाँ, नाम तो शायद सबने सुना ही होगा, फ्रॉयड।
बिल्कुल, लेकिन उनके विचारों में ऐसा क्या खास था? मतलब आज भी उन पर इतनी बहस होती है, इतने जरूरी माने जाते हैं।
हमारे एक श्रोता ने कुछ लेख और नोट्स भेजे थे फ्रॉयड पर, और वो जानना चाह रहे थे कि भाई इन सब का निचोड़ क्या है, कहाँ से ये सब आया और आज कितना मायने रखता है।
सही सवाल है। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर फ्रॉयड के विचारों की थोड़ी गहराई में जाते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं।
हाँ, और शुरुआत शायद उनके सबसे बड़े आइडिया से करनी चाहिए जिसने वाकई सोच की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया था। बिल्कुल, वो है हमारा अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉयड ने कहा कि भाई हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो चाहते हैं या जिनसे डरते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग के उस हिस्से से कंट्रोल होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता।
ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही चौंकाने वाली बात रही होगी। तब तो यही सोचती ना कि इंसान तर्क से चलता है, सब कुछ सोच समझ कर करता है।
हाँ हाँ बिल्कुल, वो एनलाइटनमेंट प्रबुद्धता काल से चली आ रही ये सोच थी कि तर्क और आत्मज्ञान ही सब कुछ है, इंसान अपने दिमाग से सब समझ सकता है, काबू पा सकता है।
और फ्रॉयड ने कहा नहीं।
फ्रॉयड ने उसे सीधी चुनौती दी, कहा कि भाई हम अपने ही घर के मालिक नहीं हैं। ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी विचार था।
और ये विचार पनप कहाँ रहे थे? मतलब उस वक्त का वियना कैसा था? माहौल का असर तो पड़ता ही है ना सोच पर।
जरूर पड़ता है। सोचिए 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत का वियना, एक तरफ वो विशाल ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य अंदर से कमजोर हो रहा था, ढहने वाला था, दूसरी तरफ समाज में बड़ी उथल पुथल थी। पुरानी विक्टोरियन नैतिकता जो हर चीज पे पर्दा डालती थी, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ कला में, साहित्य में, संगीत में एकदम नए बोल्ड प्रयोग हो रहे थे, मॉडर्निज्म आ रहा था।
तो एक तरह का टकराव था।
हाँ, पुराने और नए के बीच वियना उस समय जैसे खोलता हुआ बर्तन था। और बौद्धिक दुनिया में भी यही हाल था। डार्विन का विकासवाद आ चुका था, धर्म पर सवाल उठ रहे थे।
हाँ, विज्ञान का बोलबाला बढ़ रहा था।
सही, नीचे जैसे दार्शनिक थे जो इंसान की दबी भी इच्छाओं की बात कर रहे थे, और चिकित्सा में पेरिस में डॉक्टर शार्को हिस्टीरिया पर काम कर रहे थे। फ्रॉयड ने उनके साथ काम भी किया था।
अच्छा, शार्को के साथ?
हाँ,
हिस्टीरिया पे।
हाँ, और उन्होंने देखा कि कैसे सम्मोहन से मरीजों के लक्षण गायब हो जाते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उनके शुरुआती साथी थे डॉक्टर जोसेफ ब्रूयर।
हाँ, उनका नाम भी आता है अक्सर।
ब्रूयो के साथ मिलकर उन्होंने अन्ना ओ नाम की एक मरीज का इलाज किया और पाया कि सिर्फ अपनी तकलीफों के बारे में खुलकर बात करने से उसे आराम मिल रहा था। यहीं से वो टॉकिंग क्योर, मतलब बातचीत से इलाज का आइडिया निकला।
अच्छा, तो ये सब चीज़ें फ्रॉयड के दिमाग में चल रही थीं, पक रही थीं। उनके अपने जीवन के बारे में क्या? बचपन, पढ़ाई, क्या शुरू से रुचि थी इन सब में?
फ्रॉयड का जन्म तो 1856 में मोराविया में हुआ था, जो आज चेक रिपब्लिक में है, एक यहूदी परिवार में। लेकिन जब वो छोटे थे, परिवार वियना आ गया।
वियना में पले बढ़े।
हाँ, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, पर पढ़ने में बहुत तेज थे फ्रॉयड। कहते हैं घर में उनकी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। 17 की उम्र में वियना यूनिवर्सिटी में मेडिकल पढ़ने गए।
मेडिकल पर रुचि तो और भी चीजों में थी शायद।
बिल्कुल, सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना था उन्हें, फिलॉसफी, विज्ञान, साहित्य सब में गहरी दिलचस्पी थी।
तो फिर वो क्या मोड़ थे जिन्होंने उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट से मनोविश्लेषण का पिता बना दिया?
कुछ बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। एक तो वही पेरिस जाकर शाको से मिलना, हिस्टीरिया पर उनका काम देखना। उससे फ्रॉयड को यकीन हो गया कि मन की उलझनों का असर शरीर पर पड़ता है
और उनका इलाज भी मनोवैज्ञानिक हो सकता है।
हाँ, दूसरा डॉक्टर ब्रूअर के साथ वो अन्ना ओ वाला केस, बर्था पेपेनहेम उनका असली नाम था, उस केस ने दिखाया कि दबी हुई यादें, भावनाएं कैसे बीमारी बन सकती हैं और उन्हें जुबान देना जरूरी है।
और तीसरा, शायद कोई निजी अनुभव?
हाँ, शायद सबसे बड़ा मोड़, 1896 में उनके पिता की मौत।
अच्छा, पिता की मृत्यु।
हाँ, कहते हैं इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने अपना खुद का बहुत गहरा विश्लेषण शुरू किया। अपने सपने, अपनी यादें, अपने डर, सब कुछ खंगालना शुरू किया।
सेल्फ एनालिसिस।
बिल्कुल। और इसी आत्ममंथन से उनके दो सबसे अहम और विवादास्पद सिद्धांत निकले, सपनों का विश्लेषण और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये वो वक्त था जब वो अपने अंदर झांक कर इंसान के मन का नक्शा तैयार कर रहे थे।
तो फिर उन्होंने इन विचारों को फैलाया कैसे? अपना क्लिनिक खोला, लिखना शुरू किया।
हाँ, 1886 में वियना में नर्वस बीमारियों के इलाज के लिए प्राइवेट क्लिनिक शुरू किया। धीरे धीरे उनके तरीके थोड़े अलग होने लगे। फिर 1902 के आसपास कुछ गिने चुने साथियों के साथ हर बुधवार को अपने घर पर ही मिलना शुरू किया।
वियना साइकोलॉजिकल सोसाइटी।
हाँ वही, जो बाद में वियना साइकोएनालिटिक सोसाइटी बनी, फिर 1910 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बन गई। विचार फैलने लगे, समर्थक भी बढ़े, विरोधी भी।
और फिर आया वो मुश्किल दौर, 1938।
हाँ, नाजियों का ऑस्ट्रिया पर कब्जा, यहूदी होने की वजह से फ्रॉयड और उनके परिवार पर खतरा था। बहुत मुश्किलों के बाद, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उन्हें वियना छोड़ने की इजाज़त मिली।
वो लंदन चले गए।
हाँ, लंदन चले गए, लेकिन वहाँ ज़्यादा समय नहीं रहे। उन्हें सालों से जबड़े का कैंसर था, सिगार पीने की वजह से, और 1939 में लंदन में ही उनकी मृत्यु हो गई।
वियना में उनका घर बरगासे 19, वो आज भी म्यूजियम है शायद।
हाँ बिल्कुल, जहाँ उन्होंने अपना ज्यादातर काम किया।
तो अब उनके काम पर आते हैं। कौन सी किताबें, कौन से विचार सबसे अहम हैं? लोग अक्सर फ्रॉइडियन स्लिप या ईगो जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनका मतलब क्या है उनके हिसाब से?
हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि उनके कई शब्द आम बोलचाल में आ गए हैं। उनकी सबसे जरूरी किताबों में से एक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों की व्याख्या। ये करीब 1900 में आई थी।
इसमें क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा कि सपने बेकार नहीं होते, वो हमारे अचेतन मन तक पहुंचने का शाही रास्ता है, रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। हमारे सपने हमारे दबी हुई इच्छाओं को दिखाते हैं, पर छुपे हुए रूप में, संकेतों में।
अच्छा, और फ्रॉइडियन स्लिप, जैसे बोलते बोलते जुबान फिसल जाना?
हाँ वही, उनकी एक और किताब थी द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी का मनोविज्ञान। उसमें फ्रॉयड ने बताया कि हमारी रोज की भूल चूक, जुबान फिसलना, कोई नाम भूल जाना, ये सब बस ऐसे ही नहीं होता।
मतलब
ये हमारे अचेतन मन की इच्छाओं या अंदरूनी संघर्षों का इशारा हो सकते हैं। अगली बार जुबान फिसले तो सोचिएगा जरूर।
हाँ, ये तो दिलचस्प है। और वो विचार जो सबसे ज्यादा विवादों में रहे, शायद बचपन और सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए।
बिल्कुल, 1905 में आई उनकी किताब 3 Essays on the Theory of Sexuality, कामुकता के सिद्धांत पर 3 निबंध। उसने तो जैसे हंगामा ही खड़ा कर दिया था।
क्या था उसमें ऐसा?
उसमें उन्होंने शैशव कामुकता, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी की बात की। कहा कि कामुकता सिर्फ बड़ों की चीज नहीं है, बचपन से ही इसके अलग अलग रूप होते हैं। उन्होंने मनोलैंगिक विकास, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के चरण बताए, ओरल, एनल, फैलिक।
ओ हाँ, ये सुने।
और कहा कि इन चरणों में अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो उसका असर बड़े होकर पर्सनालिटी पर दिखता है, और इसी में ओडिपस कॉम्प्लेक्स का जिक्र भी था।
हाँ, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत ही विवादास्पद रहा है।
बहुत ज्यादा, वो विचार के बचपन में बच्चे के मन में अपने लिंग के माता पिता के प्रति एक तरह की जलन और दूसरे लिंग के माता पिता के प्रति आकर्षण होता है।
और ये एड ईगो सुपर हीरो, ये क्या है? ये भी तो फ्रॉयड के ही है ना?
हाँ, ये उनके मन के स्ट्रक्चरल मॉडल का हिस्सा है, जो उन्होंने बाद में 1923 में द ईगो एंड द इड किताब में पेश किया। सोचिए, हमारा मन एक तरह का युद्ध का मैदान है।
अच्छा, कैसे?
एक तरफ है इड, आइड, ये मन का वो हिस्सा है जो बस अपनी बुनियादी इच्छाएं पूरी करना चाहता है तुरंत, बिना नियम कानून की परवाह किए, जैसे एक जिद्दी बच्चा।
हाँ।
दूसरी तरफ है सुपर ईगो, सुपर ईगो, ये समाज के नियम, नैतिकता, माँ बाप की सीख, इन सब से बना हमारा आदर्श है, जो बताता है क्या सही है, क्या गलत।
और बीच में?
और इन दोनों के बीच फंसा है बेचारा ईगो। ईगो ये असल दुनिया से डील करता है, इड की जिद और सुपर ईगो के नियमों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, ताकि हम जी सकें।
वाह, ये कार वाली मिसाल अच्छी थी। इड पीछे चिल्लाता बच्चा, सुपर ईगो ट्रैफिक पुलिस, और ईगो बेचारा ड्राइवर। तो इन सब विचारों का असर क्या हुआ? सिर्फ मनोविज्ञान पर या?
नहीं, असर तो बहुत गहरा और दूर तक हुआ, पहली बात तो फ्रॉयड ने मनोविज्ञान को सिर्फ बीमारियों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी, सपने, कला, साहित्य, समाज सब में मन की भूमिका दिखाई।
सही।
उन्होंने साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा की पहली पूरी व्यवस्था दी, जिसमें मरीज और डॉक्टर के बीच बातचीत उनके रिश्ते पर जोर था।
और कला साहित्य पर भी असर हुआ?
बहुत ज्यादा। साहित्य में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी तकनीक को बढ़ावा मिला। कला में अति यथार्थवाद, सरियलिज्म, वो तो सीधे सीधे फ्रॉयड के अचेतन के विचारों से प्रेरित था।
हाँ, वो सपनों जैसी पेंटिंग्स।
बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ईगो, लिबिडो, दमन यानी रिप्रेशन, कितने ही शब्द हैं जो उनकी देन है और आज भी इस्तेमाल होते हैं।
तो उन्होंने एक तरह से दुनिया को देखने का एक नया चश्मा दे दिया।
देखिए,
पर क्या सबने इसे आसानी से अपना लिया? विरोधी भी तो होंगे।
अरे, विरोधी तो शुरू से ही थे और आज भी हैं। जब उनके विचार पहली बार आए तो मेडिकल फील्ड के कई लोगों ने उन्हें अवैज्ञानिक कहा, खारिज कर दिया। खासकर उनकी सेक्सुअलिटी पर जोर देने वाली बातें वो बहुतों को पसंद नहीं आईं। लेकिन धीरे धीरे, खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद, जब हजारों सैनिक शेल शॉक से गुजर रहे थे,
हाँ, युद्ध का मानसिक आघात,
तब लोगों को समझ आया कि मानसिक चोटें भी असली होती हैं, उनका इलाज जरूरी है। तब फ्रॉयड के विचारों को थोड़ी ज्यादा स्वीकृति मिली।
और उनके अपने ग्रुप में भी तो मतभेद हुए थे, योंग और एडलर जैसे नाम आते हैं।
हाँ, बिल्कुल। फ्रॉयड का व्यक्तित्व थोड़ा कह सकते दबंग था। वो अपने विचारों से असहमति आसानी से बर्दाश्त नहीं करते थे। कार्ल योंग और एल्फ्रेड एडलर उनके बहुत करीबी और प्रतिभाशाली साथी थे शुरू में,
लेकिन बाद में अलग हो गए।
हाँ, बाद में गहरे मतभेद हो गए। युंग ने सेक्सुअलिटी पर फ्रॉयड के जोर को कम किया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्किटाइप्स जैसे अपने विचार दिए। एडलर ने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सामाजिक कारकों पर ज्यादा ध्यान दिया।
तो उन्होंने अपने अलग स्कूल बना लिए।
हाँ, और बाद में भी कई नव फ्रॉयडियन आए, जैसे एरिक एरिक्सन, करिन हॉनी। उन्होंने फ्रॉयड के मूल विचारों को थोड़ा बदला, उनमें सामाजिक सांस्कृतिक चीजें जोड़ी।
तो आज के समय में इतने सालों बाद फ्रॉयड कितने प्रासंगिक हैं? क्या उनके सिद्धांत आज भी टिकते हैं?
ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, फ्रॉयड के कई खास सिद्धांत, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स है या लिंग ईर्ष्या, पीनिस एनवी, इनको आज वैज्ञानिक रूप से साबित करना मुश्किल है।
हाँ, इनकी आलोचना भी बहुत हुई है।
बहुत। खासकर नारीवादी विचारकों ने काफी आलोचना की है। उन पर ये भी आरोप लगा कि उनके सिद्धांत इतने लचीले हैं कि उन्हें गलत साबित ही नहीं किया जा सकता। जैसे कार्ल पॉपर ने कहा था, अनफॉल्सिफाइबल है।
अच्छा, मतलब विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।
कुछ आलोचकों का यही मानना है। ये भी कहा गया कि उन्होंने सिर्फ वियना के अपने मध्यवर्गीय पढ़े लिखे मरीजों के अनुभवों को पूरी इंसानियत पर लागू कर दिया।
तो आलोचनाएं भी काफी गंभीर हैं।
बिल्कुल है, और ये जानना जरूरी है। नारीवादी आलोचकों ने कहा कि उनके सिद्धांत पुरुषों के नजरिए से हैं, महिलाओं के प्रति उनमें पूर्वाग्रह है। कुछ ने कहा कि सेक्स पर जरूरत से ज्यादा ही जोर दे दिया। लेकिन
क्या चीजें जो आज भी टिकती है?
लेकिन फ्रॉयड का जो मूल आइडिया है कि हमारे अंदर एक अचेतन मन है जो हमें प्रभावित करता है, कि बचपन के अनुभव बहुत मायने रखते हैं, कि हमारी दबी हुई भावनाएं हमारे व्यवहार पर असर डालती हैं, कि बात करने से अपने मन को टटोलने से फर्क पड़ता है।
हाँ, ये बातें तो आज भी लगती है कि सच है।
ये विचार आज भी बहुत गहरे और प्रासंगिक लगते हैं। आज जितनी भी टॉक थेरेपी होती है, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं फ्रॉयड के काम में ही हैं।
यहाँ तक कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी अब मान रहा है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ पर्दे के पीछे चलता है, हमारी जानकारी के बिना।
अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग,
भले ही वो फ्रॉयड के मॉडल से अलग हो।
हाँ, बेशक। और साहित्य, कला, फिल्म स्टडीज में तो फ्रॉयड आज भी बहुत अहम है।
फ्रॉयड के कुछ मशहूर कथन भी हैं शायद, जो उनके विचारों को समझने में मदद करते हैं।
हाँ, कई हैं, जैसे वो सपने वाली बात, सपनों का विश्लेषण मन की अचेतन गतिविधियों के ज्ञान का शाही मार्ग है। ये दिखाता है कि वो सपनों को कितना जरूरी मानते थे अचेतन तक पहुंचने के लिए।
और
एक और है, जहां इड था वहां ईगो होगा। वेयर इड वॉज, देयर ईगो शैल बी। इसका मतलब है कि मनोविश्लेषण का लक्ष्य है हमारे तर्क संगत मैं, ईगो को, हमारी आदिम इच्छाओं, इड पर ज्यादा कंट्रोल देना, हमें ज्यादा जागरूक बनाना,
खुद पर ज्यादा नियंत्रण।
हाँ, एक और जो मुझे पसंद है, बुद्धि की आवाज धीमी होती है, लेकिन जब तक उसे सुना नहीं जाता वो आराम नहीं करती। ये तर्क और सच की ताकत में उनके विश्वास को दिखाता है, चाहे उसे स्वीकार करने में कितना भी वक्त लगे।
और वो सिगार वाली बात, कभी कभी सिगार सिर्फ सिगार होता है, ये सच में उन्होंने कहा था क्या?
कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, पर पक्का सबूत नहीं है। लेकिन ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि फ्राइड हर चीज में गहरे छुपे मतलब ढूंढने के लिए जाने जाते थे।
हाँ, प्रतीकों के लिए।
और ये कहावत उसी का मजाक उड़ाती है कि भाई हर चीज में मतलब मत ढूंढो। विडंबना ये है कि फ्राइड खुद बहुत ज्यादा सिगार पीते थे, दिन के 20 सिगार तक।
अच्छा, इसीलिए उन्हें कैंसर हुआ था?
हाँ, जबड़े का कैंसर। 30 से ज्यादा ऑपरेशंस हुए, लेकिन कहते हैं सिगार पीना नहीं छोड़ा।
अरे बाप रे। और कोई ऐसी दिलचस्प बात उनके बारे में जो कम लोग जानते हो?
एक तो ये कि वो पुरानी सभ्यताओं की मूर्तियों और कलाकृतियों के बड़े शौकीन कलेक्टर थे। उनके ऑफिस में 2000 से ज्यादा चीजें थीं, मिस्र, ग्रीस, रोम की। वो इसे मन का पुरातत्व कहते थे।
मन का पुरातत्व?
हाँ, जैसे पुरानी चीजों को खोदकर इतिहास समझते हैं, वैसे ही मन की गहराइयों को खोदकर इंसान को। और एक बात कि अपनी सेक्सुअलिटी पर बोल्ड विचारों वाली छवि के बावजूद निजी जीवन में वो काफी पारंपरिक थे।
अच्छा।
और थोड़े अंधविश्वासी भी थे। टेलीपैथी में कुछ हद तक यकीन करते थे और कहते हैं किसी खास नंबर 62 से डरते थे।
वाह, तो ये थे सिगमंड फ्रॉयड, वाकई एक जटिल, विवादास्पद लेकिन बहुत ही प्रभावशाली विचारक।
हाँ, और अगर आज के लिए एक आखिरी बात सोचें तो शायद ये है, फ्रॉयड ने हमें ये समझने में मदद की कि हम खुद को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियस माइंड, वो पूरी कहानी नहीं है।
सही कहा।
चीजों से भरी है, सोशल मीडिया का इतना शोर है, क्या इसमें अपने अंदर के उस अनदेखे हिस्से, उस अचेतन को समझना और भी जरूरी नहीं हो गया है, या शायद और मुश्किल हो गया है?
ये सोचने वाली बात है।
वो जो तनाव फ्रॉयड ने पहचाना था, हमारी अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच का तनाव, क्या वो आज भी हमारे जीवन का एक बड़ा सच नहीं है? शायद इन सवालों पर सोचना ही फ्रॉयड की असली विरासत है।
संगीत।
समापन कथन।
समापन कथन, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।